ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वृद्धा श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 9 अध्याय का शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। श्लोक संख्या 14। शश्वत् स्वरूपः महसा एव निपीता भेदा मोहाय बोध दिष्णाय नमः परस्मे विश्व उद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते नमः इदं चक्रं ईश्वराय। शश्वत् स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध दिशनाय नमः परस्मे विश्वोद्भवाय स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते नमः इदं चक्रमेश्वराय। शश्वत् स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध दिशनाय नमः परस्मे विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते नमः इदं चक्रमेश्वराय। माताजी शश्वत् स्वरूप महसैव निमित्त भेद उनके विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा मेरा प्रचलित के सृजन पालन तथा सहार का आनंद लेते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा जीवों से सदैव विभेदित होते हैं। यद्यपि वे स्वरूप सिद्ध बुद्धि के द्वारा अपने निर्विशेष रूप में भी समझे जाते हैं, अतएव भगवत भक्त भगवान के निर्विशेष रूप को सादर नमस्कार करते हैं। यहाँ पर रास शब्द महत्वपूर्ण है। रास नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों के संग में वृंदावन में संपन्न किया जाता है और गर्भोदक शायी विष्णु भी अपनी उस बहिरंगा शक्ति के साथ रास के भोग में लगे रहते हैं, जिसके द्वारा वे संपूर्ण भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो सदैव गोपियों के साथ रास भोग में लगे रहते हैं, जिसकी पुष्टि गोपाल अपने उपनिषद में निम्नलिखित शब्दों द्वारा हुई है। परार्धान्ते सो बुद्ध्यत गोपवेशो में पुरुषः पुरस्तादा विभुवा। भगवान तथा जीव के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से तब अनुभव किया जाता है जब उनकी अंतरंग शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है, जो उस बहिरंग शक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा वे भौतिक सृष्टि को संभव बनाते हैं। ओम अज्ञानति निरंतरश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। वैसे परमात्मा गुरु का क्लास था लेकिन मुझे अभी बताया कि मुझे देना पड़ेगा, तो मैं अभी अभी पढ़ा आपके सामने श्लोक को। तो कई दिनों से आप ब्रह्मा द्वारा भगवान की जो स्तुति है या भगवान के प्रति विशेष प्रार्थनाओं को बोल रहे हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा, कितने मुख वाले ब्रह्मा? हाँ, तो ऐसे चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से विशेष भगवान की स्तुति निकल रही है। हम भी अपने जीवन में स्तुति करते रहते हैं। जब हम अपना किसी से काम निकलना होता है उसको क्या कहते हैं भौतिक जगत में? चापलूसी करना, चाटुकारिता करना। तो भौतिक जगत में हमें हमारे अंदर भी किसी न किसी की स्तुति प्रशंसा करने की भावना है, लेकिन उस भावना के पीछे क्या है? हमारा भौतिक स्वार्थ है। और जिस भौतिक स्वार्थ के कारण ये वैसे ही है जैसे एक गधा और एक ऊंट आपस में मित्र थे। अभी जब ऊंट की शादी थी तो सब जगह इनविटेशन लेटर तो नहीं, इनविटेशन कार्ड भेजा गया। तो इनविटेशन कार्ड भेजा और उस गधे की शादी थी, ऊंट की नहीं। तो गधे की देखना होगा किसकी शादी थी। हाँ, ऊंट की शादी थी। तो ऊंट ने अपने जो प्रिय मित्र है गधे को भी बुलाया कि आपके बिना मैं मंडपम में खड़े नहीं होऊंगा वधु के साथ। तो ऊंट ने सोचा चलो। तो ऊंट भी आते हैं उस विवाह में। बहुत जैसे आजकल लोग हाँ, शादियों में सबसे अधिक नट क्या करते हैं, श्रृंगार करके पहुंचते हैं। तो वैसे ही ये ऊंट अपनी पत्नी ऊंटनी के साथ चले गए शादी में, बहुत अच्छी तरह से वस्त्र आदि धारण किए थे, सुंदर सज धज रहे थे। जब पहुंचे तो वहां देखा कुछ तो गलत हो गया है। चलो, किसकी शादी थी याद है आपको? तो चलो अब किसी एक की शादी करते हैं। तो ये दोनों किसी एक की शादी थी, तो दूसरा पहुंच गया। तो सोचो गधे की शादी है, तो गधे ने कहा आज तो आप बिल्कुल इतना सुंदर लग रहे हो। हाँ, तो वो भी कहने लगा जो ऊंट है, मैं तो सुंदर हूं बल्कि ऊंट में क्या सुंदरता है, लेकिन गधा उसकी प्रशंसा कर रहा है। अभी ऊंट से भी रहा नहीं गया, हम भी उसी की स्तुति करते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं जो हमारे स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, चापलूसी करता है। तो वैसे ही ये ऊंट भी कहने लगा, जैसे गधे ने कहा अहो रूपम अहो रूपम, क्या आपका रूप है आज, इतने अच्छे से सज धज के आए हो। तो कहा कि मेरा तो रूप, लेकिन आपकी आवाज क्या मधुर है। किसको बोला? गधे को बोला आज आपकी शादी है तो कुछ एक गीत गाया जाए। हाँ, तो उसी प्रकार से हम झूठी प्रशंसा झूठी स्तुति एक दूसरे की करते रहते हैं। प्रभु जी आप शुद्ध भक्त हैं, कभी कभी करते ना आपस में एक दूसरे भक्तों की। हाँ, तो ये सब दिखावा है, छोटी स्तुति है, प्रशंसा है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, भौतिक स्वार्थ है, भौतिक इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं हम। लेकिन ब्रह्मा के साथ ऐसे नहीं था। ब्रह्मा जब स्तुति कर रहे थे तो केवल ओठों से नहीं निकल रहे थे, एक होता है ना इसको कहते हैं लिप सर्विस। कौन सी सर्विस? लिप सर्विस। भगवान की सेवा हम करेंगे लेकिन ओठ ही हिलाएंगे। कहा जाए प्रभु जी झाड़ू उठाओ झाड़ू मारो, नहीं प्रभु जी वो नहीं हो सकता, कैसे सेवा करेंगे हम, लिप्स हिला हिला कर, तो वैसे नहीं चलेगा। तो ब्रह्मा केवल कृष्ण की लिप सर्विस नहीं कर रहे थे, ब्रह्मा के मुख से जो स्तुतियां निकल रही थी, शब्द निकल रहे थे, वो कहां से निकल रहे थे? हृदय से निकल रहे थे। कहां से? हृदय से। इसलिए भगवत भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसी चीज का है तो वो हृदय का है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप जो मर्जी जो भी करते हो हाँ वो मैं स्वीकार करता हूं, यदि उसमें आपने अपना हृदय डाला है कि नहीं डाला है। तो यहां ब्रह्मा के जो शब्द है ये कोई बाहरी शब्द नहीं थे। वैसे भी हम देखते हैं कि जब हम गाते हैं तो वास्तव में हृदय से नहीं निकलता। हम क्या करते हैं, सोचते कि सुनने वाले कितने हैं, दाज मेरे मुझे देखने वाले कितने हैं, तब मैं गाऊंगा तब मैं बजाऊंगा। और वो सारी चीजें कहां से निकल रही है, अपने भौतिक इच्छा उनसे भरे हुए हैं मन से। लेकिन वास्तव में इसलिए कहते हैं भक्ति इज द अफेयर ऑफ हार्ट। भक्ति किस चीज का अफेयर है? हृदय का अफेयर है। और ये हृदय नहीं है भक्तिमय कार्यों में तो वो भगवत भक्ति नहीं है, और हम कभी शुद्धि अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्मा इतने बड़े महान आचार्य हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हृदय का भगवत भक्ति में होना सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं, भौतिक जीवन में हार्ट फेल हो जाए तो हम मर जाते हैं, उसी प्रकार से भौतिक जीवन में भी हृदय का बड़ा महत्व है और आध्यात्मिक जीवन में भी हृदय का बहुत बड़ा महत्व है। प्रभुपाद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं हृदय हमारे जीवन की शक्ति का संचय है। सारी जीवन शक्ति कहां से आती है? बॉडी में, हृदय में आती है, हृदय से आती है। उसी प्रकार से भगवत भक्ति भी हृदय पर निर्भर है। यदि भगवत कार्यों में, भक्तिमय कार्यों में हम अपना हृदय नहीं डालते तो भागवतम उनको कहता है श्रमय वही केवलम। ऐसा व्यक्ति चाहे जितना मर्जी मंदिरों की चक्कर लगाते रहे या परिक्रमा करते रहे, परिक्रमा कर रहा है लेकिन हृदय में किसी और के बारे में सोच रहा है तो उसका वो सारी चीजें क्या है? व्यर्थ है। प्रभुपाद उदाहरण देते, एक ब्राह्मण का और एक वेश्या का बीच में एक सड़क थी और ब्राह्मण का घर इस ओर था, सामने एक वेश्या का घर था। तो ये जो ब्राह्मण है सुबह से शाम तक गीता को लेकर जोर जोर से 700 श्लोक उच्चारण करता रहता था लेकिन टेढ़ी आंख से किसको देखता रहता था? वेश्या के घर में दरवाजे की ओर, खिड़की की ओर, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और उसका सारा मन में चिंतन किसका हो रहा है? उस वेश्या का हो रहा है। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण अपना जीवन जीता है और अचानक उस एरिया में आग लग जाती है। आग लगकर उस ब्राह्मण का घर जल जाता है, वेश्या का घर जलता है, ब्राह्मण भी मर जाता है, वो वेश्या भी मर जाती है। और फिर देखते हैं कि ब्राह्मण के पास विष्णुदूत नहीं आए लेने, कौन पहुंचे? यमदूत। यमदूत पहुंचे तो उन्होंने कहा, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, सुबह जल्दी उठता था, गायत्री मंत्र जप करता था या फिर गीता का पाठ करता था। यमदूतों ने कहा, सब करते थे बेटा, लेकिन ध्यान किधर था? वेश्या की ओर था। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जो हृदय है आध्यात्मिक कार्यों में, हाँ, उसको भक्ति में लगाना, अन्यथा क्या है, सारे आध्यात्मिक कार्य, सारे आध्यात्मिक जो प्रयास है वो विफल है। इसलिए जिस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वो सर है, उसी प्रकार से भक्ति में हृदय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हृदय नहीं है तो भगवत भक्ति विफल है, सारे भौतिक या जो आध्यात्मिक कार्य है वो व्यर्थ है। इसी कारण से गीता में भी कहते हैं भगवान, गुहा आशय स्थित, हाँ, इसको गुहा कहा गया है, गुफा होती है ना जिसमें अंदर घुस जाते हो, उसी प्रकार से ये हृदय है जिसमें भगवान कृष्ण का निवास है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं रुद्र देशे अर्जुन तिष्ठति, यदि कोई पूछे कृष्णा आप कौन से देश में निवास करते हो, आप बोलते हैं ना मैं भारत देश में निवास करता हूँ। वहां भगवान कहते हैं अर्जुन मैं हृदय रूपी देश में निवास करता हूँ। तो भगवान निवास करते इस हृदय में, और हृदय में निवास करके वो क्या करते हैं, वो हमसे आकांक्षा करते हैं कि हम सब अपना जो हृदय है भगवान कृष्ण को प्रदान करें। इसलिए मुंडक उपनिषद में भी वर्णन आता है, गीता के दूसरे अध्याय में प्रभुपाद लिखते हैं कि समाने वृक्षः, कि जो दो प्रकार के पंछी हैं, हाँ, एक बड़ा सा वृक्ष है और जिसके ऊपर दो पंछी बैठे हुए हैं उसके एक टहनी पर, एक पंछी कौन है? जीवात्मा है और दूसरा पंछी है परमात्मा या भगवान कृष्ण है। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी, हाँ, ये दोनों निवास कर रहे हैं। हृदय में आत्मा का भी निवास है और हृदय में किसका निवास है? पर भगवान कृष्ण का निवास है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान को हमारा कोई एक स्थान अधिक प्रिय है जिसपे वो निवास करना चाहते हैं तो वो हृदय है। इसलिए भगवान भक्त के हृदय को कभी छोड़कर नहीं जाते हैं, हाँ? और भक्त के हृदय में कृष्ण निवास करते हैं और सारे जीवों के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, ये ध्यान देना होगा। हाँ, भगवान कौन? गोविंद निवास करते हैं। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से मेरा ये हृदय है वो भगवान के निवास स्थान के लिए योग्य बनाओ, और उसी को साधना भक्ति कहते हैं। गुरु और शास्त्रों के शासन में भक्ति के विधि विधानों का पालन करना ही साधना भक्ति है। और यदि कोई साधक गुरु और शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध बनाता है तो भगवान उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। भगवान उस व्यक्ति की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं कि कोई बाहर बहुत अच्छे अच्छे साबुन लगा के अपने आप को चमका रहा है, हाँ उससे कृष्ण आकृष्ट नहीं होते। भगवान देखते हैं कि कौन से भक्त ने अपना हृदय चमकाना शुरू किया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सर्वप्रथम ये शिक्षा देते हैं, चेतो दर्पणः मार्जनम्, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करो। बर्तन घिसे आपने किसी ने नहीं घिसे तो प्रैक्टिस करिए जाकर घर में। हाँ, जो काला हुआ बर्तन है, हमने जो मंदिर ज्वाइन किया तो सबसे पहले भक्तों को बर्तन घिसाने की सेवा लगाते हैं 1 साल 6 महीने, और बर्तन ऐसे काले हो जाते थे या फिर डीटीज के बर्तन होते ना ब्रास के, हाँ तो तब पता चलता है कि कितना सफाई हो रहा है। प्रभुपाद कहते थे कि जितने डीटीज के बर्तन चमकेंगे उतनी ही मात्रा में आपका हृदय भी क्या होगा, चमकेगा। हाँ, तो इसलिए ये जो हृदय है जिसको चमकाना होगा, और किस प्रकार से चमका सकते हैं, हाँ साधना भक्ति का यथोचित पालन करके। हाँ, प्रभुपाद कहते कि हमारा हृदय इतना काला है, किससे अधिक काला है, कोयले से भी अधिक काला है, तो फिर हम हाथ उठा सकते हैं। कोयले से अधिक काला है तो उसको साफ करना असंभव है, लेकिन फिर भी हम भगवान वो काले लेते हैं। भगवान कहते हैं शुण्वता सो कथा कृष्ण, हाँ पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदय तस्तो ही अभद्राणी विधुरुति सुरुत सता। भगवान कहते यदि कोई व्यक्ति सुनवता सो कथा, अभी ये सो कथा भगवान अपनी कथा सुनने के लिए उनको खुद भी आनंद आता है। हम अपने जीवन में देखें तो हमें कृष्ण कथा से अधिक कौन सी कथा अच्छी लगती है, सो कथा अपने बारे में। एक तो हम अपने बारे में, कई बार होता है कोई बड़े व्यक्ति का हमें गुणगान करना होता है, गुरु का सोचो तो गुरु का नाम लेकर उनका वर्णन कम लेकिन अधिक वर्णन किसका हो जाता है, अपना हो जाता है कि मैं ये करता था, मैं वो करता था उनके साथ। हाँ, तो इस प्रकार से हम अपनी कथा में सबसे अधिक आनंद लेते हैं। तो लेकिन भगवान कहते कोई मेरी कथा को श्रद्धा के साथ सुनता है नित्य रूप से, तो मैं उसके हृदय में उसी क्षण प्रवेश करता हूं। या जो व्यक्ति ये तीव्र इच्छा जागृत करता है कि मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है, भगवान कहते हैं उस इच्छा के साथ साथ मैं उसके हृदय में प्रवेश करता हूं, और प्रवेश करके उसके हृदय की सफाई करने लगता हूं। तो हमारे एक आचार्य है तो उस श्लोक की टीका में कहते हैं कि भगवान स्वयं झाड़ू हाथ में लेते हैं और उस व्यक्ति के हृदय में क्या करते हैं, गंदगी को दूर करते हैं, सफाई करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं, या भगवान की सहायता से ही हम अपने कोयले के समान काले गंदे हृदय को साफ कर सकते हैं। और जब ऐसा हृदय जिसका वर्णन सारे शास्त्रों में किया है, भगवान एक जगह कहते हैं भागवतम में, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम, वो कहते हैं कि साधु मेरे हृदय में निवास करता है और मैं साधु के हृदय में निवास करता हूं। तो भगवान साधु के हृदय में निवास करते हैं, क्यों, क्योंकि साधु का जो हृदय है वह भौतिक कामनाओं से क्या है, पूर्ण रूपेण रहित है। और भगवान कहते हैं कि वो मेरे अलावा किसी और चीज को नहीं जानता और मैं भी उसके अलावा किसी और चीज को नहीं जानता। तो इस प्रकार से भगवान इतना अधिक प्रीति रखते हैं उस साधु से, उस व्यक्ति से जिसका हृदय 100% शुद्ध है और कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित है। तो भगवान चाहते हैं कि हम अपना जो हृदय है तीव्र गति से शुद्ध करें। क्यों हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं? हम प्रभुपाद कहते हैं एक जगह कि इसलिए हम भगवान को अनुभव नहीं कर पाते, भगवान को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने अपने हृदय में अनवांटेड जो डिजायर्स है, भौतिक इच्छाएं हैं, उनको स्थान दिया है। इसलिए भक्ति और ठाकुर भी वही कहते हैं, आशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दंभ बरायना। वो प्रार्थना करते हैं कृष्ण को कि हे कृष्णा, आशेष कामना मतलब भौतिक इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होगी, ऐसी भोग करने की इच्छाओं को मैंने अपने हृदय में रखा हुआ है, और इस भौतिक इच्छाओं के कारण हम भगवान को थोड़ा भी अनुभव नहीं कर पाते या भगवान को देख नहीं पाते। जैसे चाणक्य पंडित ने कहा कि भगवान है, हमारे नजदीक है, हम उनको सरलता से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये भोग करने की जो इच्छा है जिसके कारण भगवान हमसे अत्यधिक दूर है, इसी कारण से हम उनको देख नहीं पाते, उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। हम वो एक श्लोक में कहते हैं चाणक्य, हम पुष्पे गंधस तिले तैलम कास्ते वन्नी पयाग्रतम। पुष्पे गंध मतलब जिस प्रकार से पुष्प में गंध है लेकिन उसको हम देख नहीं पाते, तिले तैलम तिल में तेल है उसको भी हम नहीं देख पाते, कास्ते वन्नी लकड़ी में अग्नि है, पयाग्रतम दूध में क्या है, घी है, इक्षु गुड़ जो गन्ना है उसमें गुड़ छुपा हुआ है या शुगर है, तथा देहे पश्यम आत्मानं विवेकतः। उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, या परमात्मा भगवान कृष्ण है लेकिन उनको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कौन कर सकता है, केवल विवेकवान पुरुष। हाँ, विवेक से युक्त जो व्यक्ति है वही अनुभव कर सकता है। ऐसे नहीं कि भगवान बहुत दूर है, इसलिए भगवान कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां, मैं सबका नजदीक का मित्र हूं, सुहृद हो, हितेश हो। हमारी स्थिति वैसे ही है जैसे कस्तूरी मृग है। प्रभुपाद हमेशा बोला करते थे कि कस्तूरी मृग, वो उसके नाभि से वो कस्तूरी की सुगंध आती है, लेकिन वो पागल जो मृग है, हिरण है, उसकी सुगंध पाने के लिए दौड़ता रहता है कि कहां से उस सुगंध आ रही है, और दौड़ते दौड़ते फाइनली मृत्यु को प्राप्त होता है। वो अनुभव नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता कहां से ये सुगंध आई है। उसी प्रकार से भगवान भी हमारे हृदय में है, सबसे नजदीक के कोई मित्र है, हितेशी है, तो वो कृष्ण है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं या अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय 6 प्रकार के रिपुओं से, शत्रुओं से भरा हुआ है। काम, काम वास्तव में क्या है, सारे अनर्थों की जड़ है। काम, कामना, काम वासना, जो सारे भौतिक इच्छाओं का मूल है, जिसके कारण अनंत भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में ज्वालामुखी के समान उद्रित या उद्रित करती रहती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि एक भक्त को किसी चीज को सफाई करने का प्रयास करना चाहिए तो अपने हृदय को। और वास्तव में भक्ति का अभ्यास जो हम कर रहे हैं, भक्तों का संग हम कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, कई प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं, तो उसका परम उद्देश्य है कि कैसे हम अपने हृदय को साफ करें। लेकिन कभी कभी हम अपने हृदय को स्वयं ही गंदा करते रहते हैं भौतिक इच्छाओं का शिकार होकर। तो चैतन्य महाप्रभु सदैव ये कामना करते थे, और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही कोई व्यक्ति अपने हृदय को क्या कर सकता है, साफ कर सकता है इस भौतिक अनर्थों से, भौतिक शत्रुओं से। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, हम एक दो पास टाइम सुनेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे तो अलग अलग जो गृहस्थ भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट करते थे प्रसाद के लिए। हाँ, जैसे नवद्वीप से जितने भक्त जगन्नाथपुरी जाते थे वो सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु से अपना डे फिक्स कर लेते थे कि हे चैतन्य देव आज हमारे यहाँ प्रसाद के लिए पहुंचना है। लेकिन ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य है ये हमेशा चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु पूरा महीना मेरे साथ मेरे घर में आकर प्रसाद दे। तो लेकिन एक दिन वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास, कहा कि आपको आमंत्रण है प्रसाद ग्रहण करने के लिए मेरे घर में। तो उन्होंने कहा मैं एक ही बार आ सकता हूं। सर्व भट्टाचार्य कहते हैं पूरा महीना आना है आपको मेरे घर में प्रसाद देने के लिए, हम तो खुश हो जाएंगे। दो चार भक्तों को लेकर नाश्ते में पहुंचेंगे किसी के, पूरे महीने का आमंत्रण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सन्यासी के लिए उचित नहीं है किसी के घर में बारंबार जाना और वहां भोजन करना। उससे क्या होता है वो अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, अपनी जो शुद्धि है उसको खो बैठता है। मैं आ सकता हूं एक ही दिन आ सकता हूं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं आप क्या करिए, एक तो आपको आमंत्रण दे रहा हूं लेकिन उसके अलावा आपके साथ जितने भक्त रह रहे हैं उनको भी मैंने आमंत्रित किया है तो आपको उनके साथ भी आना है। हाँ, तो आप फिर अधिक दिनों तक मेरे घर में प्रसाद दे सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन तैयार हो गए और पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु उनके घर में आ रहे हैं ये सोचकर सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी जो पत्नी है वो सुबह से कुकिंग में लग गए। इतने सारे व्यंजन उन्होंने बनाए कि कम से कम 20 लोग खा सकते हैं, इतना सारा प्रसाद बनाया। कितने व्यक्तियों के लिए? एक व्यक्ति के लिए, और वो भी कौन था? सन्यासी। और ऐसा वैसा सन्यासी नहीं जो सारे जगत को अपने आचरण से शिक्षा देते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु। तो ये आए और चैतन्य महाप्रभु को बिठा दिया और सर्व भट्टाचार्य को कहा मुझे तो बस थोड़ा सा चावल और कोई शाम वगैरह सर्व करो, उसको खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो सर्व भट्टाचार्य ने कहा मैंने कुछ ज्यादा बनाया नहीं, आप आकर बैठ जाइए। तो उनके लिए एक आसन रखा चैतन्य महाप्रभु के लिए और वो आ गए चैतन्य महाप्रभु और बैठ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक विशेष रूम अपने घर में बनाया था वो चैतन्य महाप्रभु को भोजन प्रदान करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु को भोजन सर्व करने के लिए एक विशेष रूम अपने घर में बनाया था, उसमें दो दरवाजे सार्वभौम भट्टाचार्य ने बनाए थे महाप्रभु की सेवा के लिए। एक दरवाजा सीधा किचन से आता था उस रूम में और एक दरवाजा बाहर निकलता था ताकि सरलता से सीधा किचन से उनको सर्व किया जाए। और चैतन्य महाप्रभु को बिठाया, उनको सर्व करने लगे और देखा महाप्रभु ने इतने सारे व्यंजन। महाप्रभु ने कहा मैं तो एक विरक्त सन्यासी हूं, आप मुझे इतना सारा स्वादिष्ट कई प्रकार के व्यंजन भोज कराओगे तो मेरा पतन निश्चित है। एक सन्यासी को अपनी जीवा की तृप्ति के लिए इतने सारे व्यंजन नहीं खाने चाहिए और वो भी इतनी अधिक मात्रा में। इसी में से आप मुझे क्या करो, कुछ शाक आदि निकाल कर दो, वो मैं हल्का सा खा के चला जाऊंगा। सर्व भट्टाचार्य ने कहा नहीं, आपको ये सारा ग्रहण करना होगा। और सर्व भट्टाचार्य लाठी लेकर खड़े हो गए। ऐसे नहीं कि महाप्रभु नहीं खाएंगे तो उनके लिए नहीं, वो जानते थे उनके घर में एक सांप के समान अपना ही जमाई रहता था। बेटी का हस्बैंड क्या कहते हैं, जमाई ना, दामाद, दामाद दामाद भी रह रहा था। तो वो दामाद की एक गंदी आदत थी, किसी में कितने भी गुण क्यों ना हो वो कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढ लेगा, कुछ ना कुछ दोष। हाँ, इसको कहते दोष देखने की जो प्रवृत्ति इतनी तेज थी उसके, हाँ वो देख लेता था दोष, हाँ उसका कथा करता रहता था, गाता रहता था दोषों का कीर्तन। हाँ कहते ना गुण कीर्तन कहते ना भगवान के गुणों का, वैसे ही दोष कीर्तन है। तो ऐसे उनका नाम था अमोघा। तो ये जो अमोघा था उसने देखा, अरे मैं तो दामाद हूं, मैं घर आता तो इतना मेरे लिए कभी नहीं बनाते, इतना कभी मुझे सर्व नहीं करते, ये सन्यासी घर आ क्या गया उसके लिए इतने सारे व्यंजन। तो अमोघा वहां से देख रहा था एक कोने से, सर्व भट्टाचार्य डंडा लेकर गेट में खड़े थे, अंदर नहीं आना चाहिए वो। तो फिर उनकी पत्नी ने आवाज दी तो वो अंदर गए कुछ और व्यंजन लाने के लिए, किचन चल ही रहा था, लाके वहां अंदर गए तो ये जो अमोघा है उसने चैतन्य महाप्रभु जब भोजन कर रहे थे उस रूम में प्रवेश किया। तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं, हे नकाले अमोघ भट्टाचार्य रजा माता कुलीन निंदकते हो शाठिर कन्यार भ्राता। उसका गुण भी कहा गया, कुलीन व्यक्ति था, उच्च कुल में उसने जन्म लिया था, ब्राह्मण था, विद्वान था, लेकिन एक कमी क्या थी उसमें, निंदक, निंदा करने की उसकी प्रवृत्ति थी। तो उसने प्रवेश किया और उनके पत्नी का नाम भी बोला है शाठी, उनके बेटे का नाम क्या था, शाठी। यही अन्न तृप्त है दश बारह जान एकला सन्यासी करे जतक भक्षण। उन्होंने कहा इतना सारे व्यंजन है ये 10-20 लोग खा सकते हैं, लेकिन ये अकेला सन्यासी बैठ के ताव मार रहा है, खा रहा है वहां। तो ऐसे वो जोर से बोला तो उस समय सारव भट्टाचार्य को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सुना कि मेरा दामाद चैतन्य महाप्रभु के लिए इस प्रकार से वचन बोल रहा है निंदा युक्त, तो वो जोर से चिल्ला पड़े। उन्होंने डंडा अपने हाथ में लिया, अपने दामाद को जो निंदक था उसको मारने के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने कहा, शाठी रांडी हव को यहां बले बार बार, ये जो मेरी पुत्री है अब वो क्या हो जाए, विधवा हो जाए। हाँ बार बार चिल्लाने लगे। चैतन्य गोसाई रनिंदा सुनिल जहा है ते तारे वधन कैले हाय पाप प्राय चिते। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु की निंदा की है और इस निंदा को मैंने सुना है, वो भी भागीदार होता है। हाँ जो व्यक्ति दूसरे भक्त की निंदा करता है वो तो है ही आत्मा का हत्यारा, लेकिन जो अपने कानों को ऊपर करके उत्कंठित होकर भक्तों की निंदा दोषों को सुनता है वो भी उतना ही हाँ पाप का अधिकारी है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा मेरे दामाद को जीवित मार कर ही मैं क्या हो जाऊंगा, इस जो मैंने निंदा सुनी है महाप्रभु की उससे मुक्त हो जाऊंगा। फिर उनको एक विचार आया, अरे ये उचित नहीं है। उन्होंने ये भी सोचा उन्होंने कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, या तो मैं अपना शरीर छोड़ दो या मैं उस ब्राह्मण को मार डालूं। तो फिर दोनों चीजें वो सोचते हुए जब ऐसा बोल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों जो शरीर है ब्राह्मण के है और ब्राह्मण का वध करना उचित नहीं है, मैं भी ब्राह्मण हूं और मेरा दामाद भी क्या है ब्राह्मण है, लेकिन बेस्ट क्या है कि मेरी जो पत्नी है मेरी जो बेटी है उसने इस पति को त्याग देना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने शास्त्र से एक श्लोक बोला, उन्होंने कहा पतित हैले भ्राता तेजिते उचित। हाँ यदि पति पतित हो जाता है तो वो उसको क्या करना चाहिए, पत्नी ने त्याग देना चाहिए। शास्त्रों में अलग अलग कंडीशंस हैं कब अपने पति को त्यागा जा सकता है। और पत्नी का मतलब क्या है, जो पति को पतन से बचाती है उसको क्या कहते हैं, पत्नी कहते हैं, पतन से बचाती है, रक्षा करती है उसके आध्यात्मिक जीवन की भी। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि ये स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा करता है, निंदा की है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति से संबंध रखना उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा है कि इसके साथ संबंध तोड़ देता हूं और उनको भगा दिया। तो अभी ये जो अमोघा है अपना जान बचाकर भाग गया और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने फिर भी प्रसाद लिया, महाप्रभु उठे नहीं, महाप्रभु ने प्रसाद लिया और महाप्रभु चले गए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके चरणों में गिर पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि हे चैतन्य देव, मैंने आपको घर में भोजन के लिए नहीं बुलाया था, मैं वास्तव में आपको किस लिए बुलाया, आपकी निंदा करने के लिए, आपके दोषों का कीर्तन करने के लिए, आपका अपमान करने के लिए। ये तो सार्वभौम भट्टाचार्य की विनम्रता थी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुखी हो गए कि मेरे मेरे हाथ से इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। तो चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी उस दिन बिल्कुल भी कुछ प्रसाद ग्रहण नहीं करते। और शाम के समय में एक डिवोटी थे जिनका नाम था गोपीनाथ आचार्य, वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए और चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्या सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद ग्रहण किया है? तो उन्होंने कहा, नहीं, तीनों ने नहीं किया है, एक मर रहा है और दो उपवास करके मर रहे हैं। एक तो अमोघा घर से बाहर आपके प्रति अपराध के कारण क्या हो गया है, उसको हैजा की बीमारी हो गई है, कॉलरा हुआ है, जिसके कारण वो मृत्यु के शैया पर लेटा हुआ है। और यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी उपवास कर रहे हैं और निरंतर रो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को रहा नहीं। महाप्रभु का एक गुण है भगवान का, भगवान देखते हैं कि यदि उनके भक्त के साथ भी किसी का संबंध है तो भगवान उस व्यक्ति पर कृपा करना रोकते नहीं है। बल्कि नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कुलीन ग्राम के कुत्ते भी मुझे इतने प्रिय हैं जितने वहां के भक्त मुझे प्रिय हैं, क्योंकि वो भक्तों के गांव में रह रहे हैं, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए निकलते हैं अपने स्थान से और वहां जाते हैं जहां ये जो अमोगा है जिसने उनकी निंदा की थी उसके पास जाते हैं। सोचो, हम तो उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति का रिवेंज बदला लेना चाहते हैं, मेरी निंदा की आपने, मेरी बदनामी की है, अभी दिखाता हूं आपको मैं कौन हूं। तो ये हमारी स्थिति है, ये इसका लक्षण है, ये आसुर का लक्षण है। किसका लक्षण है? आसुर का, क्योंकि अभी तक हृदय विमल नहीं हुआ है। हाँ? तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनकी इतनी भर्त्सना की, अपमान किया, निंदा की, फिर भी महाप्रभु उस अमोघा के पास जाते हैं और अमोघा के पास जाकर क्या करते हैं, उसके हृदय पर हाथ हाथ रखते हैं। सहज निर्मल ब्राह्मण हृदय कृष्ण रवसिते योग्य स्थान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्राह्मण का मतलब है जिसका हृदय शुद्ध हो। महाप्रभु ने कहा, जी ब्राह्मण हो तुम और ये तुम्हारा हृदय वास्तव में कृष्ण के निवास के लिए बना हुआ है और स्वाभाविक रूप से आपका हृदय शुद्ध है। लेकिन कहा महाप्रभु ने, ये चांडालनी कहां से आ गई जो तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गई? मात्सर्य चांडाल केने यहां बसाई ले, परम पवित्र स्थान अपवित्र कैले। महाप्रभु ने कहा, ये ईर्ष्या रूपी द्वेष रूपी जो चांडाल है या चांडालनी है, वो तुम्हारे हृदय में कहां से आ गई? इतना पवित्र स्थान था जिसको तुमने जानबूझकर क्या किया, अपवित्र कर दिया। सर्वभौम संगे तो मार कलुष है लक्षाय, कलमश उचिले जीव कृष्ण नामलाय। लेकिन उन्होंने, महाप्रभु कहते हैं, तुम बहुत भाग्यवान हो, मैं भी तुम्हारे अंदर हजारों कमियां हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारा संबंध किससे है? सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान भक्त से है। हाँ, भगवान एक कनेक्शन देखते हैं। हाँ, उसी प्रकार से हमें जितने भी कर्जित कमियां हो, लेकिन हम आध्यात्मिक गुरु की सेवा में क्या करते रहे, लगे रहे। हाँ, अपने अनर्थ हो जो भी हो, लेकिन गुरु जो कह रहे हैं उसके साथ उनके सेवा में लगे रहते हैं, तो कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करना शुरू करते हैं। कृष्ण वो गुण देखते हैं कि हाँ, ये गुरु की सेवा में लगा हुआ है किसी ना किसी प्रकार से। इसलिए प्रभुपाद क्या करते थे, कई सारे शुरुआत के दिनों में उनके शिष्यगण कहीं ना किसी न किसी प्रकार से छोड़कर चले जाते थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद घुमा फिराकर उनको अपनी सेवा में नियुक्त करते थे। एक टेंपल प्रेसिडेंट थे हवाई के, प्रभुपाद पहुंचने से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, टेंपल ही बेच दिया, सारा पैसा लेकर भाग गए। प्रभुपाद पहुंच गए वहां, अरे टेंपल भी नहीं है और टेंपल प्रेसिडेंट भी नहीं है। हाँ, तब दूसरा प्रभुपाद को फोन आया कि कोई और उनका बहुत बड़ा अधिकारी कोई और काट करके चला गया, हाँ किसी स्त्री के साथ भाग गया। तो भक्तिमय जीवन में बड़ी बड़ी उथल पुथल होती है। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, प्रभुपाद ने फिर भी उसको क्या किया, अपनी सेवा में लगाया, शुद्ध हो जाएगा, बाहर जाएगा, भौतिक कार्यों में और अधिक वो निमग्न होगा और नारकीय जीवन बिताएगा। हाँ, तो कृष्ण फिर वैसे ही कृष्ण देखते हैं कि कोई आध्यात्मिक गुरु या वैष्णव की सेवा में लगा है, चाहे उसमें जितनी मर्जी कमियां हो, तो भगवान उसको शुद्ध करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार से ये जो अमोघा था, उन्होंने देखा महाप्रभु ने कि इसके अंदर एक ही गुण है, हाँ कि ये सर्व भट्टाचार्य के साथ इनका संबंध है। तो उन्होंने कहा कि तुम तो शुद्ध हो सकते हो, सारे कलमश तुम्हारे दूर हो जाएंगे, यदि तुम क्या करो, कृष्ण का पवित्र नाम का उच्चारण करो। उठह अमोघ तुमे लो कृष्ण नाम, आचरे तुम्हारे कृपा करिबे भगवान। तो महाप्रभु ने हृदय में हाथ रखा और कहा हे अमोघ, तुम्हारे अंदर में भी निंदा आदि करने की प्रवृत्ति है और अभी तुम मर रहे हो, उठो, उठकर क्या करो, कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु चाहते हैं कि वास्तव में जो हृदय है वो कृष्ण के लिए है, और ये जो हृदय है कि जो परम शुद्धि हो सकती है, यदि हम क्या करते हैं, कृष्ण के परम नामों का हम उच्चारण करते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं जैसे महाप्रभु ने कहा उठो, हाँ तो वो सोए नहीं, हाँ वो तुरंत उठ गए और अमोघा प्रेममय भावना से नाचने लगे और चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने लगे। हाँ, तो वैसे इसी प्रकार से वास्तव में जो हृदय है कृष्ण का निवास स्थान है और इस हृदय को शुद्ध किया जा सकता है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझकर। और चैतन्य महाप्रभु ने परम औषधि हमें दी है, वो औषधि क्या है, कृष्ण का ये जो पवित्र नाम है। लेकिन भगवान के नामों के अलावा, भगवान के अलावा इस हृदय में हम किसी और को स्थान देते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने जीवन में चिंता या कष्टों को आमंत्रित करते हैं। और वैसे देखा जाए हमारे दुख की जड़ यही है, क्या है हमारे दुख की जड़, हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को लेकर बैठे हुए हैं, जैसे मुचुकुंद थे। महाराज मुचुकुंद जब विजयी होते थे और अपने राजधानी में प्रवेश करते थे तो हजारों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होते थे, नगाड़े बजते थे, ब्राह्मण स्तुतियां करते थे। हाँ, लेकिन राजा मुचुकुंद कहते हैं भागवतम में कि लेकिन सारे लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मेरा हृदय किसमें, किस चीज के विचार में है, कब मैं अपने रानियों के महल में जाऊंगा, कब उनसे भोग की याचना करूंगा। और उस भोग की पूर्ति के लिए महाराज मुचुकुंद कहते हैं उनके चरणों को तलवे को मैं चाटता हूं, मतलब उनका हृदय क्या है, हृदय किस चीज में लगा हुआ है, भोग करने की प्रवृत्ति में। मुचुकुंद कहते हैं इसी कारण से मेरे पास सारा सांसारिक सुख है, भौतिक धन सुविधा मान सम्मान सब है, लेकिन मेरे हृदय में क्या है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण के प्रति सेवा करने की भावना नहीं है, जिसके कारण मैं दुखमय स्थिति में हूं। जैसे महाराज जड़ भरत थे, जिनके कारण राजा भरत थे वो भागवत में कहा है, जिनके कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ऐसे जो राजा भरत थे उनको इतना वैराग्य आया, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति मल का त्याग करता है सुबह के समय और उसका कोई विचार नहीं करता, उसी प्रकार से महाराज जो भरत थे उन्होंने सारा अपना राजपाट त्याग दिया और त्याग कर वन में चले गए। वन में चले गए और वन में जाकर किससे किसको अपना हृदय दिया उन्होंने, वहां एकांत में भजन आदि करते थे, साधना करते थे। और एक दिन जब नदी की ओर जा रहे थे जल पान करने के लिए, तो देखा कि एक जो मृग है, एक जो हिरण है, गर्भवती हिरण, वो जो पानी पीने के लिए जा रहे थे, तो अचानक उस हिरण ने शेर की दहाड़ को सुना, जोर से आवाज को सुना, तो गर्भवती जो हिरण थे वो प्रस्तुत हो जाती है और अपने बच्चे को जन्म देती है उसी समय, और वो शरीर छोड़ती है, मर जाती है। तो ये जो अभी राजा था साधु बनके या वैराग्य लेकर जंगल में आया था भजन करने के लिए, अपना हृदय भगवान को देने की सोच रहा था, लेकिन अभी जब उनको ये मृग का जो बच्चा है छोटा सा जो हिरण था वो दिखाई दिया, उन्होंने कहा अरे इसकी रक्षा कौन करेगा, इसको चलो मैं संभालता हूँ, ये मर जाएगा। तो उसको लेकर आता है, लेकर उसका पालन करता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, और धीरे धीरे देखा जाता है कि महाराज जो भरत जिन्होंने मल के समान सारे संसार को त्यागा, जो हृदय कृष्ण को देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना हृदय किसको दिया, अभी उस छोटे से हिरण को दिया, मृग से मृग यानी मृग को दे दिया। और इतना अधिक आसक्त हो गए उस हिरण से कि अपना जप करना भी भूल गए। जप शुरू होने से आग खुलती थी सुबह, तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था, उस मृग के बच्चे का। वैसे हमें चेक करना चाहिए हमारा हृदय जहां जिस चीज का जिस व्यक्ति का अधिक स्मरण करता है, सोचना चाहिए उस व्यक्ति के लिए मेरा हृदय क्या है, भाग रहा है। सुबह उठते ही हमें यदि कृष्ण का स्मरण होता है प्रगाढ़, गुरु का स्मरण होता है, शास्त्रों का स्मरण होता है, हरि नाम का स्मरण होता है, तो सोचना चाहिए कि हृदय अभी कृष्ण की ओर आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा किसी और का स्मरण हो रहा है उठते ही, तो समझ लेना चाहिए कि मेरा हृदय गलत दिशा में क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे जड़ भरत जो भरत महाराज है वो इतने अधिक मग्न हो गए कि सोते समय खाते समय सब कार्यों में केवल वो हिरण ही हिरण नजर आता था। और फिर एक एक समय उन्होंने देखा कि अभी बहुत समय हो गया, वो हिरण कहाँ चला गया, घर वापस नहीं आया। तो वो हिरण को ढूंढते हुए वो दौड़ने लगे, दौड़ते हुए इतने अधिक उसमें निमग्न थे हिरण के विचारों में, जिसको अपना हृदय दे बैठे थे कि पत्थर पांव में लगकर गिर पड़ते हैं और उसी क्षण अपना शरीर छोड़ते हैं। अंतकाल में उस हिरण का स्मरण होता है जिसको उन्होंने हृदय में धारण किया था, और फिर उन्हें क्या मिलता है, हिरण का ही शरीर मिलता है। तो इसी कारण से वास्तव में हमें अपने हृदय में भौतिक व्यक्ति स्थान इन चीजों के बजाय कृष्ण को स्थान देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चाहे हमारे जैसे कवि थे विद्यापति, वो लिखते हैं कि व्यक्ति को क्या सुख मिलेगा इस संसार में, अपनी पत्नी बच्चे धन अपना ऐश्वर्य उससे क्या सुख मिलेगा, उससे मिलने वाला सुख वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में है और रेगिस्तान में उसको कुछ बूंदे पानी दे दो, हाँ तो उससे उसकी तृप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार से ये भौतिक सुखों की तुलना कुछ बूंदों से की गई है। आत्मा तो क्या है, आनंदमय भ्यासा, उसकी जो सुख की कामना है वो अतोषणीय है, मतलब जो बुझा नहीं सकते आप भौतिक चीजों से, हाँ उसको बुझा जा सकता है आध्यात्मिक चीजों से। इसी कारण से वो कहते हैं, हाँ किसी चीज की कामना करनी है तो वो आध्यात्मिक चीज की कामना करनी है, किसी चीज को हमारा हृदय देने का प्रयास करना है तो आध्यात्मिक चीजों को हृदय देने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं एक प्रचारक को कैसे होना चाहिए। कई बार हम प्रचार करते हैं तो जिसको प्रचार करते हैं उसको अपना हृदय दे बैठते हैं। प्रचारक को एक बंदर के समान होना चाहिए। हाँ, जैसे वो स्टोरी आती है ना, बंदर और कौन, मगरमच्छ। तो बंदर और मगरमच्छ बहुत अच्छे मित्र थे। हाँ, एक जलाशय के किनारे एक पेड़ था, उसमें कई सारे फल हुआ करते थे, तो बंदर वहां रहता था, फल खाता था, और मगरमच्छ जल में रहते थे। तो ये जो मगरमच्छ है उसका वेडिंग एनिवर्सरी आ गया। क्या कहते हैं उसको, विवाह, विवाह का जो गठबंधन होता है ना, हाँ वो दिन आया। तो उसकी पत्नी ने कहा, आज के दिन तो इतने साल पूर्व हमारा विवाह हुआ था, आज मेरे जीवा बहुत हिल रही है, कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाह रही है। तो उन्होंने कहा, आज तो बताओ, अपना हृदय भी दे सकता हूं मैं तुम्हें आज। तुमने कहा आपका हृदय नहीं चाहिए मुझे, किसका हृदय चाहिए, आपने तो दे दिया जब शादी कर ली, हाँ किसका हृदय चाहिए अभी मुझे, आपका जो मित्र है बंदर उसका हृदय चाहिए, कलेजा, उसको हम कुकिंग करेंगे, फ्राई करेंगे और उसको पका कर खाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। हाँ, तो ये जो मगरमच्छ आ गया और रोज ये इतना खेलते थे मगरमच्छ और बंदर, वो पूरा बोट बोट क्या कहते हैं बोटिंग, बंदर उसके पेट पर बैठ जाता था और पूरा सवारी करके घूम के वापस आता था। तो इसका लगा रोज की तरह आज भी, हाँ आज भी वही स्थिति है। तो ये बड़ा उत्साह से बंदर ऊपर से देख रहा था, तो मगरमच्छ ने कहा अरे जल्दी आ जाओ, आज हमें पूरा तालाब घूमना है, कई जगहों में आपको ले जाऊंगा। ये बंदर कूद के बैठ गया उसके ऊपर। जैसे जैसे डीप वाटर में जा रहा था वैसे वैसे सारे रहस्यों को खोलना शुरू किया। किसने, मगरमच्छ ने। उन्होंने कहा आज तो बड़ा पवित्र दिन है, मेरा और मेरे पत्नी का आज गठबंधन हुआ था और आज की तो परम इच्छा है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करूंगा तो गठबंधन टूट सकता है। उन्होंने क्या इच्छा है, क्या कामना है। उन्होंने कहा एक ही कामना है, मेरी पत्नी आपके कलेजे का फिस्ट खाना चाहती है। उन्होंने कहा अभी इसका हाथ टूटने वाला था बंदर बेचारे का, तो उन्होंने कहा अभी दादा में बुद्धि योगम, भगवान ने बुद्धि दे दी उसे। उस तीर जब समस्या आती है जीवन में तो विचलित नहीं होना है, अब वो सत्वगुण का लक्षण नहीं है, चाहे जो मर्जी समस्या आ जाए स्थिर रहना है। हाँ, वो जैसे विपदा, जैसे तूफान आता है आगे चला जाता है और व्यक्ति वैसे खड़ा रहता है। हाँ, तो ये सुख और दुख आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, हम शास्त्रों के शिक्षाओं को समझते हुए। तो ये जो बंदर था ये सोचने लगा, बुद्धि दी भगवान ने उसे, कहा अरे मैं आज तो इतना भाग्य, इतना महत्वपूर्ण दिन है, आज मेरा कलेजा क्या, अपने आप को आहुति देने के लिए तैयार हो, स्वाहा करने के लिए तैयार हो यज्ञ में। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक कमी है, क्योंकि हम रहे बंदर, इस टहनी से वहां कूदते रहते, उस पेड़ से उस पेड़ में, तो ये जो हृदय है कलेजा है बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत हल्का और लचीला है, कभी भी गिर जाता है वो नीचे बार बार। तो आप सारे बंदर अपना जो कलेजा है उसको पेड़ में टांग के रखते हैं। कहाँ टांग के रखते हैं, पेड़ में टांग के रखते हैं। हाँ, ये गुरु और शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, ये ऐसी वैसी स्टोरी नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं वहां टांग के रखता हूं टहनी पर। तो उस समय उन्होंने कहा चलो अभी वापस यू टर्न लीजिए, मैं वहां से निकाल कर ले आता हूँ, फिर आपको और आपके पत्नी को ऑफर करता हूँ। उसकी पति तो अपने पत्नी को प्रसन्न करने में मारी गई थी, क्या हो गई थी, मारे गए थे, बुद्धि काम नहीं करते, वो बुद्धो यू टर्न लिया उसने, वापस आ गया पेड़ के पास। और क्या क्या बंदर ने जितनी शक्ति थी उतनी यूज की और छंप मारी सर्वोच्च शिखर सबसे ऊपर वाले टहले पर, और वहां जाकर बोलने लगा हरे बोल। तो हमने कहा अरे मगरमच्छ, हाँ तुम्हें पता है हाँ कैसे कोई व्यक्ति अपने हृदय से अलग रह सकता है, कलेजा को टांग के रख सकता है क्या? हाँ तो इससे क्या सीखते हैं हम, जो एक भक्त है प्रचारक है हाँ, तो उसे क्या करना चाहिए? सदैव अपना जो हृदय है गुरु और कृष्ण के चरणों में टांग के रखना चाहिए। कोई मांगे तो बोले अभी मंदिर होके आता हूं, प्रचार के लिए जाते हैं ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हो हाँ, और कई जगहों में कई चीजों के लिए हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन अपने हृदय को कहाँ छोड़ के जाओ? राधा गोविंद देव के चरणों में, प्रभुपाद के चरणों में। और बाहर में भी हम भ्रमित हो सकते हैं, भौतिक प्रकृति से आकृष्ट हो सकते हैं, तो हमें जैसे कोई कहे कि आपका हृदय चाहिए, जैसे आप मायापुर में थे तो वहां एक पुजारी था, एक माता जी ने उनको पुजारी को पत्र लिखा कि पुजारी प्रभु जी, लेटर लिखा, लव लेटर लिखा छोटा सा एक ऐसे पन्ना। उन्होंने कहा मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप क्या पूजा करते हैं वंडरफुल, इतने आकृष्ट हो गई हूँ, आपका हृदय मुझे चाहिए। वो ब्रह्मचारी था बेचारा, तो उसने भी लेटर लिखा पीछे और उसने बोला भी सबको। उन्होंने लेटर लिखा कि मैंने, हे माता जी मुझे अभी क्षमा कर दो, मैंने पहले से मेरा हृदय किसको दे चुका हो? राधा माधव को, आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, हम इसी और को ढूंढो। इस प्रकार से ये जो प्रेचर है उसको भी अपना हृदय गुरु और कृष्ण के चरणों में टांग देना चाहिए, बांध देना चाहिए हाँ, तो फिर हम किसी चीज के प्रति आकृष्ट नहीं होते और फिर सेवा में फिक्स रह जाते हैं। हनुमान थे, हनुमान के हृदय में कौन थे? कौन थे? सीता राम हाँ। जब उन्होंने इतनी सेवा की, हम सेवा से पहले सोचते कि क्या पुरस्कार मिलना चाहिए मुझे, पहला कम से पहले सोचते ना क्या पुरस्कार लेना है मुझे, तभी मुझे ये सेवा करनी है। वो हनुमान को जब पुरस्कार वितरण का समय आया अयोध्या में, सारे लोग विमान से आए, सारे बंदर से, वानर सेना और सीता देवी राम सब कुछ आया अयोध्या वापस, और वहां सोचा कि इतनी सारी बंदरों ने सेवा की है, भगवान राम तो बड़े कृतज्ञ हो रहे थे। उन्होंने कहा सबको मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दूंगा। बड़ा सा स्टेज बनाया गया और चेयर्स रखी गई, बंदरों को नीचे बिठाया गया, सीता देवी हनुमान जी सब ऊपर थे, और फिर अलग अलग और सबको गिफ्ट्स दी जा रही थी। किसके हाथों से? सीता देवी के हाथों से। बंदर गदगद हो रहे थे, जिनके लिए हमने इतना युद्ध किया, इतनी लड़ाई की, उनके हाथों से हमें मिल रहा है हाँ, गिफ्ट मिल रहा है। फिर फाइनली हनुमान जी के लिए कहा गया, तो हनुमान जी को देखते ही सीता देवी ने क्या किया, सबसे मूल्यवान अपना जो हार है हनुमान को दे दिया। हनुमान देखने लगे, मनकों को देखने लगे, किसको? जितने भी मनके थे हाँ। मैं जब स्कूल में जाता था तो एक जगह दिखता था, एक ऐसे एक फोटो लगा होता था वहां, वो हनुमान और राम ऐसे गले लगे हुए हैं। बचपन से आगे चलने तक इसको हम ज्वाइन नहीं किया, तब तक वो फोटो हमेशा याद आता था। इसका मतलब क्या है? इतना घार राम जी ने पकड़ा हुआ है हनुमान को, ऐसे गले लगाया है, और हनुमान भी राम को पकड़े हुए हैं। क्यों? कोई बताए? मैंने कई लोगों को पूछा, कोई बता नहीं पाता था ये क्यों मिल रहे हैं आपस में। कहीं देखा हो ना फोटोज, तो ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी एक बुक में तब पता चला कि क्यों इतना गहरा आलिंगन किया है। तो ऐसे जब दिया उन्होंने सीता देवी ने, तो हनुमान जी देखने लगे उसमें, हम मन को में देखने लगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाहर से तो नहीं दिखाई दे रहा था, सोचा अंदर कुछ होगा मन को में। क्या किया उन्होंने? दांतों का इस्तेमाल किया उसको तोड़ तोड़ कर, तो नीचे जो क्राउड में लोग बैठे थे, अरे हनुमान क्या कर रहे हो, हाँ क्या ढूंढ रहे हो उसमें? उन्होंने कहा मैं ढूंढ रहा हूं। किसको ढूंढ रहा हूं? सीताराम को ढूंढ रहा हूं। राम है कि नहीं इसमें, इसमें काम हो सकता है। हमारे पास क्या है? सबके पास मोबाइल है, इसमें राम है या काम है, ढूंढना पड़ेगा हमें। हाँ, तो वैसे उन्होंने ढूंढ रहे थे, तो किसी ने चैलेंज किया, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर को भी चैलेंज किया था। और नरोत्तम दास ठाकुर को कहा, तुम अपने आप को ब्राह्मण सबको दीक्षा देते हो, ब्राह्मण हो क्या तुम? तो उन्होंने कहा ब्राह्मण से भी अधिक गुण है इनमें। श्रीनिवास आचार्य ने कहा ब्राह्मण का थ्रेड है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना छाती अलग किया, ऐसे गोल्डन थ्रेड बाहर निकाला। वैसे हनुमान ने भी, किसी ने पूछा कहाँ है राम सीता दिखाओ, तुम्हारे हृदय में है, तो हम सुनते ना, देखते भी है फोटो। हनुमान जी ने क्या किया, क्या किया, छाती विदीर्ण कर दिया। और वाह, हम अपना छाती विदीर्ण करें तो क्या निकलेगा? वहां विदीर्ण किया छाते, तो सीता और राम गदगद हो गए। यही कारण था, पहले तो सीता देवी बहुत उनको आशीर्वाद दे रहे थे, चिरंजीवी भो, हमेशा के लिए जीवित रहो। बहुत दुखी हो गए हनुमान, ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं, जीवित रहने का आशीर्वाद। उन्होंने कहा मुझे ऐसा जीवन कभी भी शोभनीय नहीं है या स्वीकार्य नहीं है, जिस लंबी आयु में भगवान राम की सेवा और भगवान राम की कथा सुनने का अवसर ना हो, तो ऐसी लंबी आयु मुझे स्वीकार्य नहीं है। हम तो लंबा जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन हमें दोनों चीजें नहीं चाहिए, राम की कथा भी नहीं चाहिए और राम की सेवा भी नहीं चाहिए। तो ऐसे हनुमान हाँ वो दिखा देते हैं, और राम जी वहां खड़े हो जाते हैं। अचानक भगवान राम सोचते कि हनुमान ने इतनी सेवा की है, उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो हनुमान के पास जाते हैं, पहले तो भगवान राम आंखें बंद करते हैं। आचार्यगण कहते क्यों हनुमान ने, राम जी ने आंखें बंद की? पहले तो सोचने लगे राम कि मेरे सृष्टि में क्या ऐसी वस्तु है सर्वोच्चम सर्वोत्तम जो उनको दे सकता हूं। तो राम जी ढूंढ ढूंढ के कुछ मिला नहीं, आंखें खोल ली उन्होंने, खोलकर हनुमान जी के पास गए और हनुमान को क्या किया, आलिंगन। उन्होंने कहा हनुमान आपकी सेवा के बदले मेरे पास कुछ नहीं है इस आलिंगन के अलावा। मीन्स भगवान राम अपने आप को क्या करते हैं, हनुमान को दे देते हैं, क्योंकि हनुमान ने अपने हृदय में किसको रख दिया था, कृष्ण को या भगवान राम को, उनकी सेवा को रखा हुआ था। इसी प्रकार से हम देखते हैं ब्रज की जो गोपिकास हैं, क्यों कृष्ण वृंदावन के भक्तों से इतने आकृष्ट हैं, इतने द्वारका के भक्तों से आकृष्ट रही हैं, क्योंकि उनका जो हृदय है वो पूर्ण रूपेण भगवान हम कृष्ण के लिए है। तो हम भी अपने हृदय में भगवान को निवास प्रदान कर सकते हैं, यदि हम वैदिक साधना भक्ति का गंभीर रूप से पालन करते हैं। हाँ, तो फिर इस हृदय से क्या होगा, कृष्ण प्रकट होंगे। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, ये चित्त की शुद्धि कैसे होगी, श्रवण आदि के द्वारा। हाँ, श्रवण सबसे पहले शुरू होता है नाम, फिर रूप, गुण, लीलाओं से। तो इस प्रकार से यदि साधक गंभीरता से सिंसियरली इन कार्य में लगता है, हाँ, तो निश्चित रूप से वो शुद्ध होता है। सोचो जो वाल्मीकि थे, वो कितने, क्या शुद्धि थी उनमें, इतने सारे पाप कार्यों में वो रत थे, ऐसा कोई पाप कार्य नहीं था जो वाल्मीकि ने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ना किया। हाँ, साधुओं को मारना, धन लूटना, कितने सारे कार्य किए थे, लेकिन एक दिन क्या ऐसा सौभाग्य था कि एक दिन उनके जीवन में एक डिवोटी आ गए। कौन से डिवोटी आ गए, कौन से डिवोटी, नारद मुनि आ गए। हाँ, जो नार का मतलब है नारायण, द का मतलब है देने वाले, प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि जो नारायण को सबको दे देते हैं तो उसको नारद कहा जाता है। तो ऐसे नारद मुनि उनके जीवन में आए और उन्होंने कहा कि इतना आप पर अपने परिवार के लिए कार्य करते हो, तो फिर आप जब इतने पाप करते हो तो जाओ अपने पत्नी से बच्चों से पूछो कि वो अपने पाप का भाग स्वीकार कर सकते हैं। तो ये गए बड़े उत्साह से और सबके सामने अपना निवेदन रखा। पत्नी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, बच्चों ने सारे हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम तो बस तुम कमा के लेके आओ महीने के आखिरी में, वही हम जानते हैं। वो पाप करो पुण्य करो कुछ भी करो, कोई पूछता है कभी घर में कैसे कैसे आप कमाते हो, कितना कष्ट उठाते हो, धूप है बारिश है ठंड है मानसिक टेंशन है बॉस का डंडा है सब चीजें सहन करके व्यक्ति लाकर परिवार को देता है, लेकिन परिवार के लोग भक्त नहीं बनना चाहते, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, पाप में भागीदार नहीं होना चाहते। ये गया और नारद के चरणों में गिरा। उन्होंने कहा नहीं, वो तो अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। नारद मुनि ने कहा इसलिए भक्त क्या है, इसलिए प्रभुपाद लिखते थे, जो प्रभुपाद पत्र लिखते थे उसके आखिरी में लिखा करते थे, क्या लिखा करते थे, एवर में मिशन, कि आपका हमेशा का शुभ चिंतक। तो भक्ति है सुर सर्वभूतानां, भगवान और उनके भक्त। तो जब नारद ने कहा कि ठीक है आप ये नहीं करती है, आपको मैं एक उपाय बताता हूं। क्या उपाय, उन्होंने कहा भगवान राम का नामों का उच्चारण करो। इतना पाप हुआ था राम बोलते बोला नहीं जाता था, क्या बोलता था, मरा, जैसे किसी की जीभ बड़ी मोटी होती है ना, मोटी जीभ वाला, कई बच्चे जन्म लेते हैं वो 5-6 साल के होते तभी भी बोल नहीं पाते, तोतले बोलते हैं, तो चेक करते उनके माता पिता उसकी जीभ क्या है, मोटी है। तो पाप के कारण भी नाम हमसे लिया नहीं जाता, इतने सारे पापों के कारण। तो जब इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है उल्टा तो उल्टा जब शुरू करो, हम भी वैसे करते ना, चलो शराब पी रहे हो कुछ कर रहे हो ठीक है, लेकिन क्या करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मरा मरा चलो मरा मरा बोलते रहो, जब समय बीत गया इतने गंभीरता से सिंसियरली जब करते रहे एक जगह बैठकर, वाल्मीकि कितने जगह बैठे थे जब करने के लिए, एक ही जगह बैठकर जब कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो गया उनके ऊपर चींटियों का घर बन गया। और फिर अपने पर्वत मुनि मित्र के साथ जब नारद जी आए तो देखा अरे आवाज आ रही है, बड़ी शुद्ध आवाज आ रही है, अशुद्ध नाम की आवाज आ रही है, राम राम। उन्होंने कहा मेरा डिसाइपल है, मेरा शिष्य है वाल्मीकि, जो ये नाम उच्चारण कर रहा है, हम तो इस प्रकार से सिंसियरली हम फॉलो करते हैं भक्तों के और गुरु के आदेशों को, तो निश्चित रूप से हमारा हृदय किसमें लगना शुरू हो जाता है, कृष्ण में लगना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हृदय है ये भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। और हम देखते हैं इस श्लोक में कि ब्रह्मा के मुख से सारी स्तुतियां या प्रार्थनाएं निकल रही हैं, केवल ओठों से ऊपर ही नहीं, हाँ कहाँ से निकल रही है, हृदय से निकल रही है। और वास्तव में हम कृष्ण का गुणगान यथोचित रूप से तभी कर सकते हैं हाँ जब हम हृदय हमारा क्या हो, शुद्ध हो गया। हाँ तो ऐसी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं ब्रह्मा की। और वास्तव में एक प्रार्थना हमें हमेशा करनी चाहिए अपने जीवन में, जो प्रहलाद महाराज कहा करते थे। प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिम्हा ने कहा कि कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा ठीक है एक ही चीज आप बहुत फोर्स कर रहे हो मुझे, तो एक चीज देना चाहते हो तो वो दे दो। यदि उन्होंने कहा कि हे नरसिम्हदेव आप मुझे कोई एक चीज देना चाहते हो तो वो दे दो, कि मेरे जो हृदय है हृदय में भौतिक भोग करने की अनंत कामना है, जिसके कारण मैं अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं। तो ये भौतिक भोग करने की जो सारी इच्छाएं हैं, वो मेरे हृदय से क्या करो, मिटा दो, हटा दो। यही एक मैं प्रार्थना आपसे करता हूं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना करते हैं, जो हमारे लिए आदर्श है। हाँ, तो आज हम यही सीख सकते हैं कि वास्तव में एक बुक भी है जिसका नाम है भक्ति इज द अफेयर ऑफ हार्ट। हाँ, तो भक्ति ये हृदय का अफेयर है। हाँ, तो भगवान के साथ भी हमें अपना हृदय का अफेयर रखना होगा, और वो तभी हम रख सकते हैं जब भक्तों के संग में आकर भगवान के नाम रूप गुण लीला को सीरियसली और सिंसियरली हम क्या करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम्।